جی
پہلے بابا نے بول رہا تھا ایک ایک کو
سندیش
بھی دینا ہے, ایک ایک کو بھی سندیش دینا پڑتا ہے.
500 کروڑ کی دنیا میں, 700 کروڑ کی دنیا میں بھگوان باپ آیا ہوا ہے, اور وہ باپ جو آتماؤں کا باپ ہے وہ منوشیہ سرشٹی کے باپ میں آیا ہوا ہے. ساری منوشیہ سرشٹی 500-700 کروڑ کا باپ ہے, وہ سب کو سندیش ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے کہ آیا ہوا ہے؟
ایک ایک سندیش دینا پڑتا ہے.
نہیں, ایسے نہیں کہا ایک ایک کو سندیش دینا پڑتا ہے. ایک ایک کو الگ الگ بیٹھ کر کے سپتاہی کورس دینا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے. 500-700 کروڑ ایک ایک بیٹھ سمجھیں گے نہیں, صرف سندیش لیں گے.
سندیش تو
500-700 کروڑ کو سندیش ملے گا, اخباروں کے دوارا, ٹی وی کے دوارا, انٹرنیٹ کے دوارا, کوئی بھی سادھن ملے ساری دنیا کو سندیش ضرور ملے گا.
بابا ابھی وی آئی پی کو سیوا کرو ایسا بولتا ہے نا, وہ کیسا کرنا ہے؟
وی آئی پیز کی سیوا کیسے کرنی ہے یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا. جیسے ہر آتما کی سیوا کرنی ہے کہ یہ سمجھ کر کے شبھ سنکلپ لے کے کہ یہ باپ کا بچہ بن جائے, ورسا لینے لائق بن جائے, ایسے شریشٹھ سنکلپ دھارن کر کے ہر آتما کی سیوا کرنی ہے تو وی آئی پی کی بھی سیوا کرنی ہے.
تو بہن جی کے ساتھ جانا اور ماتاؤں کا ساتھ جانا کیسا
بولا ہے مرلی میں, بھائی بھائیوں کو جا کر سمجھانے, اور ماتائیں ماتاؤں کو جا کے سمجھاوے. لیکن یہ ہجوم کی بات بتائی, پردرشنی کی بات بتائی, جو میلے ملاکڑے لگاتے ہیں ان کی بات بتائی, لیکن جو سندیش دینے جانا ہے وہ بات الگ ہے. لیکن کوئی کی بدھی میں گہرائی سے بیٹھانا ہے تو گہرائی سے بیٹھانے کے لیے پیورٹی مکھیہ ہے. کیا دنیا کے سارے کام کیسے سدھ ہوتے ہیں؟ پیورٹی سے سدھ ہوتے ہیں. اور پرسوں میں تو تھوڑا آگے آگے جانا تھوڑا بند کرنا چاہیے, کنیاؤں ماتاؤں کو آگے کرنا چاہیے. باپ بھی آتے ہیں کنیاؤں ماتاؤں کا من مان دے کے, اس کلیوگ کی دنیا میں کنیاؤں ماتاؤں کو تو پیچھے دھکیلا جاتا ہے, خاص کر کے بھارت میں. تو شیو شکتیوں کو آگے کرنا ہے, اور اس سے پانڈووں کا بھی نام بالا ہوگا. شکتیوں کا نام تو بالا ہونا ہی ہے, جیسے بی کے بنتے ہیں تو بی کے برہمنوں کی دنیا میں پہلے باپ برہما کے تن میں پرتکش ہوا, برہما باپ کے روپ میں نام والا ہوا, پریکٹیکل میں لوگوں نے جانا کہ ہے. پرنتو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں جو برہما باپ کی بچیاں ہیں وہ سنسار کے سامنے پرتکش ہوتی ہیں, ان کا نام بالا ہوتا ہے. جو پرکریا بی کے میں چلتی ہے بیسک براہموں میں, وہی پرکریا ایڈوانس کے براہموں میں بھی چلے گی. इसलिए मुरली में बोल दिया था कि ये ब्रह्मा बन चला जावे, परंतु किस यज्ञ में मम्मा शक्तियों के साथ अंत तक सेवा करती रहेगी। सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया है, भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो राम बाप जो शिव बाप में आता है, जो शिव बाप जिस राम बाप में आता है, जिसके शरीर की यादगार लिंग दिखाया गया है, उसकी पूजा दिखाई गई है। बाद में जिस मूर्ति जिस शरीर में आता है, वो मूर्ति शंकर और राम की भी दिखाई गई है। फिर बाद में जो कन्वर्ट होने वाले देवताएं हैं, देवात्माएं कन्वर्ट हो जाती हैं और धर्मों में, फिर जानवरियत का पार्ट बजाती है। ऐसी आत्माएं जिनको जानवर भगवान के रूप में दिखाते हैं, उनकी भी पूजा दिखाई गई। और अंत में जब कलयुग आता है तो पुरुष देवताओं की पूजा दिखाते हैं या शक्तियों की पूजा दिखाते हैं, देवियों की पूजा दिखाते हैं, किसकी दिखाते हैं? देवियों की बहुत पूजा होती है कलयुग अंत में। तो जैसा भक्ति मार्ग में होता है, वैसा ही ज्ञान मार्ग में संगम युग में शूटिंग होती है। बाद में शक्तियों का नाम बाला जरूर होता है। संसार के सामने चाहे इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, वो भगवान बाप को साकार रूप में क्यों नहीं पहचान पाते है? क्योंकि साकार का पार्ट लोप हो जाता है। ऐसे तो अव्यक्त वाणी में बोला है कि बच्चों के सामने बाप सदा प्रत्यक्ष है, लेकिन जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं उनके सामने प्रत्यक्ष रहेगा। सारी दुनिया तो आत्मिक स्थिति में नहीं प्रत्यक्ष होती है, होती है, आत्मा बनती है 16 कला संपूर्ण नहीं बनती है। तो वो आत्माएं बाप को नहीं पहचान पाती, जो मुकर्रर रथ में आकर के पार्ट बजाता है। इसलिए सभी धर्म वाले निराकार को बहुत महत्व, निराकार को मानते हैं।
निमित्त बहन जी को लेना है क्या?
फिर वो बात, यहां क्या गंगा सागर में जो बंगाल के लोग हैं वो गाय की पूछ पकड़ करके कहते हैं पार करेगा पार करेगा पार करेगा, और पूछ पकड़ लेते हैं गाय की। ऐसा होता है क्या भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में होता है? हैं? अरे पकड़ना है, यहां तो भगवान बाप को पकड़ना है या शक्तियों की पूछ पकड़नी है? बोलो।
नहीं बाबा, आपने बोला ना ये पीस को सेवा करने के लिए कन्या माता को लेना पड़ता है, ऐसा
लेना पड़ता है, बाप ने नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि सेंटर में अगर ब्रह्मा कुमारी नहीं है तो कोई जो युगल है चलने वाले जिज्ञासु वो सेंटर नहीं संभाल सकते है? संभाल सकते हैं या नहीं? हाँ संभाल सकते हैं। आगे चल करके युगलों का ही नाम वाला होना है। लक्ष्मी नारायण जैसों का नाम वाला होना है, वो ही विश्व के मालिक बनेंगे और नंबर बार विश्व के मालिक बनेंगे। और
तो युगल का साथ देना, माता का साथ देना,
युगल है तो युगल का साथ छोड़ना है क्या?
निमित्त वालों को नहीं,
निमित्त को युगल है वह बट्ठे। और
बाबा
हाँ,
1998 में 15 अगस्त के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी था।
हाँ जी।
और उस दिन बाबा ने जेल से बाहर आया था।
हाँ जी।
और अभी 2017 में भी 15 अगस्त के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी है।
हाँ।
तो वह क्या होगा बाबा?
देखो जिसे कृष्ण की बात की जा रही है वो कृष्ण बच्चा है, जिसे हम अभी बता चुके कि वो दादा भी है। वो दादा कृष्ण बच्चा जब प्रत्यक्ष होता है तो बाप को प्रत्यक्ष करता है, बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करता है। सन्स होज
फादर।
तो शिव बाप का अव्वल नंबर बच्चा कौन हुआ है? अरे प्रजापिता बच्चा हुआ, वो तो बाप के रूप में है ही, वो तो स्वयं कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला है। वो बाप है, बाप को बिंदी बना देंगे क्या? सिर्फ बिंदी बनाएंगे कि साकार निराकार का मेल बनाएंगे? हाँ, वो साकार निराकार का मेल है। जो साकार निराकार का मेल है उसमें बच्चा भी है, इसलिए जो जगत पिता शंकर का चित्र दिखाया जाता है चरित्र को प्रत्यक्ष करने वाला, उसमें ज्ञान सूर्य का बच्चा वो चंद्रमा भी दिखाया जाता है मस्तक में, और बाप का विरुद्ध है कि बाप बच्चों को आगे करता है, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। तो जो पहला बच्चा है मनुष्य सृष्टि का, उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब तक न हो तब तक बाप का कैसे हो सकता है? लेकिन वो तो ब्राह्मण बच्चा है, जो शरीर है वो ब्रह्मा के ज्ञान से जन्म लेता है या नहीं लेता है? लेता है। ब्रह्म ज्ञान से जन्म लेने वाला ब्राह्मण बच्चा उसकी प्रत्यक्षता का जो दिन है वो जन्माष्टमी गाया जाता है। जन्माष्टमी का मतलब है कि सात विशेष आत्माएं हैं जिन्हें सप्तऋषि भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की विभूतियां कही गई है, वो विभूतियां सतयुग में सात नारायण के रूप में जन्म लेती है। उनके जन्म के बाद, सतयुग में उनके जन्म के बाद वो आठवां बच्चा प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। उन आठ में भी तीन रूप हैं। जैसे भी किसी धर्म में एक धर्म पिता बीज रूप होता है, सूक्ष्म बीज, जैसे सनातन धर्म का सूक्ष्म बीज शिव, एक होता है स्थूल बीज प्रजापिता एडम आदम, और अगला होता है आधार मूर्त, जिसका आधार लेकर के धर्म पिता जो सूक्ष्म है वो संसार में प्रत्यक्ष होता है। जैसे बुद्ध सूक्ष्म पिता है और वो बौद्ध धर्म का जो आधार मूर्त सिद्धार्थ है उसमें प्रवेश होता है। तो तीन रूप हो गए, एक सूक्ष्म रूप धारण करने वाला पिता, एक है साकार पिता, सिद्धार्थ का कोई पिता भी होगा, और उसका बच्चा आधार मूर्त। तो जन्माष्टमी जब मनाई जाती है उस जन्म में साकार कौन है, जो जन्म जन्मांतर साकार शरीर धारण करता है, वो चंद्रमा के रूप में कृष्ण चंद्र भी है और राम बाप के रूप में राम बाप भी है। साकार की जयंती गाई जाती है, निराकार की तो कोई जयंती नहीं होती। निराकार शिव ने सन 36 में या सन 47 में कोई प्रकार का प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लिया। ये तो सिर्फ कहेंगे कि निराकार आत्मा ने प्रवेश किया, जन्म तो नहीं हुआ। जन्म माने बच्चा बाहर आता है, सारी दुनिया मानती है बच्चे का जन्म हुआ। पहले माता पिता को पता चलता है, घर वालों को पता चलता है, मोहल्ले वालों को पता चलता है, गांव वालों को पता चलता है, जनपद को पता चलता है, दुनिया को पता चलता है। तो ऐसे ही है कृष्ण बच्चे का जन्म, वो ब्राह्मण बच्चा है, लेकिन ब्राह्मणों के दो जन्म माने जाते हैं, द्विजन्मा कहा जाता है। द्विज, द्वि माने दो, ज माने जन्म। वो ब्रह्मा की आत्मा द्विज है, कृष्ण की आत्मा। ये पहला जन्म है सन 98 का, तो दूसरा जन्म भी जरूर होगा। बत्ती मार्ग में ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण का दूसरा जन्म तब माना जाता है जब उसका यज्ञोपवीत होता है। तीन सूत्रों को धारण करता है ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र, शंकर का ज्ञान सूत्र। तीनों ज्ञान सूत्र का मेल ब्रह्मफांस में होता है, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, तो कृष्ण बच्चे का अभी दूसरा जन्म नहीं हुआ है जो उसे द्विज कहा जाए, पक्का ब्राह्मण वो तब होगा जब शिव बाप महाशिवरात्रि में इन संसार में प्रत्यक्ष होता है। छोटी मोटी रात्रि नहीं, और सामान्य रात्रियां तो 5000 वर्ष में वर्ष वर्ष होती रही, दिन बाई दिन होती रही, वो महान रात्रियां नहीं है अज्ञान अंधकार की। ये अज्ञान अंधकार की रात्रि तब होगी जब नया कल्प शुरू होगा, उसको कहेंगे संवत एक एक एक। अभी तो दुनिया में विदेशियों के भी संवत चल रहे हैं, और भारतीय परंपरा के भी शक हूण और विक्रम संवत चल रहे हैं, लेकिन वो सब 2500 साल के अंदर के हैं, मनुष्यकृत संवत। और ये तो दिव्य दुनिया की शुरुआत होगी, देवताओं की दुनिया। लक्ष्मी नारायण वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो बाप के साथ बच्चे का जन्म गाया हुआ है। बाप अकेला जन्म नहीं लेता है, न शिव बाप अकेला प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, न बच्चा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। ये महाशिवरात्रि अभी आने वाली है, जबकि ब्रह्मा के शरीर छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर के भी 50 वर्ष पूरे हो जाए, तब बाप और बच्चे दोनों का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में कृष्ण जन्माष्टमी भी रात्रि में मनाते हैं और शिवरात्रि भी रात्रि में मनाते हैं, दोनों का जन्म इकट्ठा कर दिया। जैसे आया समझ में? हाँ जी
आया।
आगे दे दो पकड़ो।
हवा एक बार आप बताए थे कि वहाँ वन वन होता नहीं, वहाँ दिन गिने नहीं जाते, क्या दुख बताए तो दिन गिने जाते।
हाँ, तो वन 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 जब शुरू होगा तो नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग में अनुभव करने वालों का संगठन भी इस संसार में बन जाएगा। वो छोटा सा संगठन होगा नई दुनिया का, परिवार की एक इकाई से शुरुआत होगी, 8 का परिवार होगा, नई दुनिया बनेगी। तो उसका फाउंडेशन जो पक्का बनेगा वो संपन्न आत्माओं का बनेगा या कुछ कमजोर आत्माओं का भी होगा? है, संपन्न आत्माएं 8 प्रत्यक्ष होंगी, जिनके बीच कृष्ण जन्माष्टमी गाई जाती है। और वो जन्म भक्ति मार्ग में, ये जो संसार रूपी जेल है उसको क्रॉस कर जाता है। जन्म होता है तो जेल में नहीं रहता, इसे दुखों की संसार रूपी जेल में रहेगा या सुखों की दुनिया में पहुंच जाएगा? है, सुखों की दुनिया में पहुंच जाएगा, और सुखों की दुनिया की शुरुआत भी तो होगी, उसका भी तो कोई संबंध होना चाहिए। तो वो बाप बताते हैं कि सुखों की दुनिया का वो संबंध होगा, उसे छोटी सी नई सृष्टि के लिए होगा, सारी दुनिया नहीं जानेगी एकदम, सारी दुनिया उस बैकुंठ को, उस जन्नत को, उस हेवन को, हेवनली गॉड फादर को, 500-700 करोड़ की दुनिया तो तब जानेगी जब सारी दुनिया भस्म होने को होगी। इसलिए बोला मुरली में कि नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग देता हूं। जो गायन होता है भक्ति मार्ग में, स्वर्ग बैकुंठ जन्नत हेवन, दूसरे धर्म क्या, जो आत्माएं हैं वो भी तो मानती है ना स्वर्ग को, नहीं मानती? मानती है। तो जो मानती हैं वो कौन सी मानती हैं? अपने धर्म की जो पक्की रहती है, कभी देवी देवता बनती ही नहीं वो मानेगी, या जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उन धर्मों में, वो खिंच करके जब यहां ब्राह्मण बनती हैं संगम में वो मानेंगी? कौन मानेंगी जन्नत को? यहां की बात है। और
एक सेकेंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलते हैं?
जब सुपुरुषार्थ संपन्न होता है हर आत्मा का, हर आत्मा की विकर्म विनाश होते हैं अनेक जन्मों के, तो जिस सेकंड में पिछले सभी जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं वही सेकंड जीवन मुक्ति का है। और ये जीवन मुक्ति दुनिया की 500-700 करोड़ हर मनुष्य आत्मा को मिलती है। ये बात दूसरी है, कोई को अनेक जन्मों की जीवन मुक्ति मिलती है और कोई को सिर्फ एक जन्म की जीवन मुक्ति मिलती है।
बाबा,
हाँ जी,
जो तुम बच्चे हैं वो सब साकार में निराकार को मानते हैं और जानते हैं, लेकिन भगवत गीता में लिखा है बाबा कि योग युक्त मन बुद्धि वाले भी कल्पांत में ब्रह्मलोक जाने के समय मुझको जान जाते हैं। यहाँ बी शब्द वो क्यों लगा है बाबा, और वो कल्पांत की बात क्यों करते हैं?
कल्पांत में दुनिया के लोग भी जानेंगे कि भगवान साकार में आता है,
लेकिन बाबा
पहले नहीं जानेंगे, जब विनाश होगा, सर के ऊपर पूरा डंडा बजेगा तब जान जाएंगे। ये विनाश करने वाला भी कोई है प्रैक्टिकल में, और जन्नत बनाने वाला भी कोई प्रैक्टिकल में है शरीर के साथ, सारी दुनिया को पता चलेगा। बाप, इसलिए मुरली में बोला है, जब फादर है, विश्व का पिता है, तो फादर सबको मिलना चाहिए। फादर है और किसी से मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की आत्माओं को या तो आंखों के सामने सन्मुख मिलेगा, या तो अखबार के द्वारा, जो अखबार में चेहरा छपता है उससे आत्मसात होगा, या तो टीवी के द्वारा होगा, या तो इंटरनेट के द्वारा होगा। बीसियों तरह के साधन निकलते रहते हैं, उनके द्वारा वो आत्मसात करेंगे बाप के साथ। जैसे गांधी जी को 40 करोड़ ने अपना राष्ट्रपिता मान लिया कि नहीं? क्या देखा उनको आंखों से? देखा नहीं? देखा, लेकिन हकीकत है, मान लिया कि हाँ प्रैक्टिकल में हुआ। तो ना कैसे कर सकते हैं? और
बाबा, उस सब लोग योगी उस समय होंगे बाबा, कि अभी जो योगी होंगे, जो तुम बच्चे, वो तो ऑलरेडी बाबा को तो मानते हैं, जानते हैं बाबा।
हाँ जी,
मतलब फिर वो कल्पा
नंबर वार जानते हैं, एक जैसा तो नहीं जानते। जब कल्प का अंत होगा, सारी दुनिया का ध्वंस होगा, दीपावली की तरह धीरे धीरे फटाके फटते फटते अंत में सारे फटाके एक साथ फटते हैं, ऐसे जब पूरा ध्वंस होगा, तो दुनिया की जो 500-700 करोड़ भी आत्माएं की लिस्ट में आती हैं, वो भी मानेंगी कि भगवान इस सृष्टि पर साकार रूप में आया हुआ है, इसलिए झाड़ के चित्र में कोई शरीरधारी झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया कि नहीं, और उसके आगे पीछे सब आत्माएं जा रही है, दिखाया है या नहीं?
दिखाया।
तो टीवी में सब अनुभव करेंगे उसकी दृष्टि का।
बाबा, इतना ज्ञान लेने के बाद भी योग्य सारे नहीं बन पाते हैं, तो उस कम समय में सारे योग्य कैसे बन जाएंगे बाबा?
ये जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, ये इस ड्रामा रूपी रंगमंच के पात्र हैं या नहीं है? जोर से बोलो।
अजी बाबा,
हैं। ये पात्र छोटे बड़े पात्र हैं कि सब एक जैसे पात्र हैं?
छोटे बड़े अलग अलग।
जो जितना बड़ा पात्र है वो उतने ही बड़े ज्ञान और योग की शक्ति को परमपिता परमात्मा से धारण करता है। जो जितना छोटा पात्र है उतनी कम शक्ति को धारण करता है, इसलिए भक्ति मार्ग कह दिया है परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसकी जो शक्ति है योग शक्ति, वो सब में व्यापक है, हर आत्मा में वो नंबर बार शक्ति भरी हुई है, पेड़ पौधों में भी वो शक्ति है, जीव जंतुओं में भी वो शक्ति है, मनुष्यों में वो शक्ति है, परंतु अन्य जीव जंतुओं के मुकाबले मनुष्यों में जास्ती है, क्योंकि मनुष्यों में मन बुद्धि है और जीव जंतुओं में इतनी मन बुद्धि नहीं है। नहीं समझ में आया?
समझ में आया।
हाँ जी,
अब गीता में एक श्लोक में बताया कि ब्रह्म का सात्विक कर्म है बाबा।
हाँ जी,
तो उसमें वो दादा लेखराज ब्रह्मा का इशारा दिया गया?
नहीं।
हाँ बाबा,
ब्रह्मा एक है या अनेकों के नाम है?
अनेकों का नाम है बाबा।
तो नंबरवार ब्रह्मा होंगे कि एक जैसे ब्रह्मा होंगे?
नंबरवार
ब्रह्मा है तो नंबरवार ब्रह्मा जो विष्णु की भुजाएं हैं, कोई ऊपर की भुजाएं हैं, कोई नीचे की भुजाएं हैं, कोई दाई ओर की भुजाएं हैं, कोई बाई ओर की सहयोगी भुजाएं हैं, और कोई तो उन भुजाओं को कंट्रोल करने वाला है, उसको कहा गया है परम ब्रह्म। जो गाते हैं गुरुरु ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा, गुरुरु विष्णु, पांच आत्माओं के संस्कार का मेल गुरुरु विष्णु, गुरुरु देवो महेश्वर, जो महान ईश्वर है, ईश्वर है, ईश माने शासन करने वाला, प्यार से सारे संसार का शासन करता है, इसलिए महान है। पुरुष के डंडे से, मिलिट्री की जोर से, एटम बमों के फटाके से कंट्रोल नहीं करता, इसलिए महान है। गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो जो परम ब्रह्म है उस ब्रह्म की बात है।
श्लोक
दादा लेखराज ब्रह्मा की बात नहीं है।
उस श्लोक को एक बार पढ़ लूं।
पढ़ लो।
सात्विक कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान और ब्रह्मा अक्षर परमेश्वर सदाशिव शंकर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब जगह अपने संकल्प शक्ति से पहुंचा हुआ ब्रह्मा सर्वदा प्रतिष्ठित है। अर्थात जहाँ जहाँ ज्ञान यज्ञ होता है वहाँ वहाँ ब्रह्मा स्वरूप हनुमान की उपस्थिति होती है।
ठीक है, ब्रह्मा एक थोड़े ही है, ब्रह्मा एक है या अनेक है?
अनेक है।
तो ऐसे ही है जैसे अर्जुन एक नहीं है, अनेक है। युधिष्ठर एक नहीं है, अनेक है। भीम एक नहीं है, अनेक है। ऐसे ही ये ब्रह्मा के लिए बोला, जो ब्रह्मा सो विष्णु की स्टेज को धारण करने वाली आत्मा है, वो एक की बात नहीं है। गीता में ये भी बोला है जो ब्रह्म है वो निर्दोष है। तो जब नंबर बार ब्रह्म है तो सब एक जैसे निर्दोष हैं, सत्य हैं, या नंबर वार है?
नंबर
तो हो गया। और हाँ देना देना देना
नेक्स्ट गॉड इज प्रजापिता, और प्रजापिता का युगल है छोटी माँ, और अष्टम में दो नंबर है योगिनी माँ। तो नेक्स्ट प्रजापिता कौन है बाबा?
नेक्स्ट प्रजापिता,
नेक्स्ट प्रजापिता
जो प्रजापिता है वो तो नेक्स्ट टू गॉड है। गॉड है निराकार शिव, और इतना ही नहीं बोला, ये भी बोला नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो कौन हुआ है? कौन? नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, संगम युग नारायण। अब अगर कहा जाए उसके बाद नेक्स्ट कौन है, कोई है या नहीं है? है जगत पिता है, तो जगत पिता के बाद नंबर किसका है इस दुनिया में, जगत में? नई दुनिया की बात छोड़ दो, लक्ष्मी नारायण की दुनिया की बात छोड़ दो, इस जगत में जगत के पिता के बाद किसका नंबर है? जगत माता का। इसलिए बोला भगवान से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, प्रजापिता से मिलता है जगदम्बा को, जो सारे जगत की माता है, और माता से सारे जगत की मनुष्य आत्माओं को नंबरवार वर्षा मिलता है। उसमें लक्ष्मी भी है, उसमें योगिनी भी है। हाँ जी
बाबा, ओम राधे हाथ का नाम है,
है?
ओम राधे हाथ का नाम, हद का नाम,
ओम राधे हद का नाम है। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया का नाम है।
बेहद में जगदम्बा सरस्वती टाइटलधारी मामा, विष्णुपुज में चक्र, सत्ययुगी राधे, सत्ययुगी लक्ष्मी, श्रवण कुमार का अंतिम माँ, बुद्धि छोटी माँ आधार मूर्ति में, और को ही नाम है क्या?
ढेर के नाम, ढेर के ढेर नाम किस लिए गिनाई दिए है? किस कारण गिनाए? ढेर के ढेर नाम गिनाने का मूल लक्ष्य क्या है? अरे जल्दी जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट
नहीं है। एक नाम
है
ये कि आत्मा को प्रयत्न में अनेक नाम है।
बाबा तो कहते हैं एक ही देवी है, एक ही देवी अनेक कन्याओं में प्रवेश करके पाठ बजाती है तो नौ देवियों का पाठ गाया जाता है और देवी की ढेर भुजाएं हैं तो वो भी देवी है। इसलिए जो वर्षा प्राप्त करने वाली बात है वो देखनी है। अव्वल नंबर में वर्षा प्राप्त करने वाला कौन, फिर द्वयम नंबर में कौन है, अरे किसी मुरली में कहा तुम बच्चों को जगदम्बा बनना है, जगदम्बा इस जगत का 500-700 करोड़ की दुनिया का नाम है या नई दुनिया का नाम है जो भगवान की बनाई हुई है?
700 करोड़ दुनिया का।
फिर मैं तो आप कौन सी दुनिया को देते हैं, नई दुनिया को महत्व देते हैं। तो नई दुनिया में अगर कोई फीमेल है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वो तो लक्ष्मी है जो भगवान बाप से जगदम्बा के द्वारा वर्षा पाती है। प्रजापिता के बाद नंबर किसका है, रुद्रमाला वालों का नंबर लगता है पहले या विजयमाला का नंबर पहले लगता है, पहले कौन सी माला बनती है बाप की? बाप की माला जो है वो राजाएं बनते हैं या विजयमाला में बाद में जो आते हैं वो राजा बनते हैं? रुद्रमाला के बच्चे बाप के बच्चे हैं, उन बच्चों में आठ की माला प्रसिद्ध है जो आठ सर के ऊपर रखे हुए हैं। वो समझ में आ गए हैं? आ गए।
बाबा कुमारी का अच्छा नाम है दादी का।
हाँ
इसमें प्रकाशमणि
बेहद में प्रकाशमणि
प्रकाशमणि बेहद का
नाम। अरे कुमार का माने कुमारी, जिसने शादी नहीं की है वो कुमारी। ये हद की बात बताई, ब्रह्मा की बुद्धि में हद की बात है और ब्रह्मा के जो ब्रह्म वाक्य निकलते हैं शिव के वाक्य हैं, ब्रह्मा की आत्मा के वाक्य नहीं है। ब्रह्मा का मुख सिर्फ निमित्त बनता है उन वाक्यों को निकालने के लिए, इसलिए ब्रह्म वाक्य कहे जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जब उस वाक्य को समझता ही नहीं तो उसका मूल्य हुआ है? हुआ
नहीं।
बेहद में समझता ही नहीं कुमार का कौन है। बेहद में कुमार का वो है जो जीवन भर कुमारी है, शादी करती ही नहीं। जगदम्बा फिर भी शादी करती है, जगदम्बा की भुजाएं भी शादियां करती है, लेकिन जो राधा है चंद्रवंशी राधा सिर्फ राम को धारण करने वाली, उसकी बात है।
तो दादी को वेद में सत्ययुग का सेकेंड नारायण, त्रेता का शरद सीता, सेकेंड आधार मूर्ति और इस्लाम धर्म का आधार मूर्ति दीवाल, फर्स्ट नारद
है,
फर्स्ट नारद
कौन?
वो कुमार का दादी।
हाँ इस्लाम धर्म में
आधार
दुनिया का जो दूसरा धर्म है देवी देवता सनातन धर्म के बाद, उस इस्लाम धर्म की मुख्य आत्माओं में से है। फर्स्ट कुमारिका नहीं है इस्लाम धर्म में, आधार मूर्त ब्रह्मा बाबा ने कुमारिका को ज्यादा महत्व दिया या विश्वकिशोर को ज्यादा महत्व दिया? यज्ञ की सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर सौंपी? विश्वकिशोर के ऊपर सौंपी। तो वो सतयुग का सेकंड नारायण साबित होता है, कृष्ण वाली आत्मा का वारसदार साबित हो जाता है, उसके बाद नंबर आता है कुमारिका का।
सेकंड नारायण
नारायणी,
नारायणी।
हाँ जी। और
बाबा एक मुरली में बाबा ने बोला है कि सतो प्रधान बनने के लिए 100% तमो प्रधान बनना है, तो 100% तमो प्रधान बनने के बाद ही ज्ञान मिलेगा क्या?
100% तमो प्रधान जो आत्मा बनती है तो 100% रावण भी बनी या नहीं बनी?
बनी
बनी। जो 100% रावण होगा वो 500 करोड़ को रुलाने वाला हुआ या नहीं हुआ?
हुआ
हुआ। तो कौन हुआ? जो सारी दुनिया का विनाश करता गाया जाता है, और राम ही रावण बनता है।
वो कुमारिका दादी,
बच्चे को, बच्चे को दो, बच्चे को।
फ्रेंड्स और टीचर को शॉर्ट में कैसे संदेश देना है?
पांच सौ
फ्रेंड्स और टीचर को,
प्रिंस को,
फ्रेंड्स,
हाँ फ्रेंड्स, मित्र,
मित्र और टीचर को कैसे संदेश देना है?
कैसे संदेश देना है?
शॉर्ट में कैसे संदेश देना है?
स्वर्ग में थोड़े ही,
शॉर्ट में,
शॉर्ट में यही संदेश दो कि नई दुनिया सतयुग आने वाला है, ये पुरानी दुनिया तमोप्रधान कलयुग जाने वाला है, और नई दुनिया का बनाने वाला भगवान आया हुआ है। ये संदेश हो गया। तीन बातें सुना दो, संदेश हो गया। वो आत्मा तुम्हारी राजाई में आ जाएगी, पुरुषार्थ करे या न करे, ज्ञान सीखे या न सीखे, अभी योग में बैठे न बैठे, बाद में बैठेगी, लेकिन तुम्हारी राजाई में आ जाएगी। इतना संदेश देने मात्र से।
और दादी,
अरे पीछे कोई हाथ उठा रहा है तुम्हारी बोलने से पहले, दे दो दे दो दे दो दे दो।
हाँ, निरंजन मानस क्या है?
निरंजन निराकार। अंजन कहते हैं काजल को, अंजन माने काजल, कालिमा, वो निरंजन है, माना कालिमा रूपी पाप उसमें नाम मात्र को भी नहीं है। जिनकी आत्मा में 100% अंजन कालिमा चढ़ जाती है, वो काली दिखाई जाती है। राम कृष्ण को भी काला दिखाया गया। कब काले बनते हैं? उनको निरंजन निराकार कहेंगे या अंजन धारण करने वाले कहेंगे? अंजन माने पाप, पापों का, पापों की कालिमा। काला कर्म करते हैं ना, तो उसको कहते हैं कालिमा, काला मुंह कर लिया। निरंजन माना जिसमें कोई पाप नहीं है, परम धाम की तो बात ही छोड़ दो, इस साकार सृष्टि पर भी आता है तो ढेर की ढेर आत्माओं के साथ इंद्रियों का संबंध जोड़ता है। जो यादगार शिव के मंदिर में दिखाई गई है, मुरली में भी बोलते हैं तुम सब पार्वतियां हो, तो ऐसा इंद्रियों का संबंध जोड़ने के बावजूद भी उसमें कोई पाप नहीं लगता। नहीं तो एक पुरुष एक स्त्री करने के बाद, एक शादी करने के बाद अगर दूसरी शादी करता है तो उसको पाप कर्म कहा जाता है, तीसरी करता है तो और पापी हो गया। राजाओं ने अनेक रानियां रखी तो बहुत पापी हो गए, बहुत अंजन धारण कर लिया। अंजन माना कालिमा, काजल। इसलिए एक भगवान ही है जो इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में ऐसे कर्म करता है, ऐसी याद में रहता है किसी मनुष्य शरीर के द्वारा, ऐसी संपन्नता की स्टेज की यादगार वो मंदिर में रखी हुई है शिवलिंग के रूप में, जो निरंजन निराकार गाया हुआ है निराकारी स्टेज में, देवान का नाम निशान नहीं। और
दादी का खेल में गांधारी, अहल्या, माया जानकी, माया पिल्ले, माया बेटी, माया मौसी, दो दो पढ़ के साथ
दे दो। अरे जरा जोर से बोलने दो, ढेर सारे नाम। हाँ,
गांधारी,
अरे धीरे।
पत्थर बुद्धि, माया चालाकी, माया बिल्ले, माया बेटे, माया मौसी, दो दो पणका सांप
है,
दो दो फणका सांप,
दो दो
सर्वशक्तिवान,
दो मुंह का सांप,
दो मुंह का सांप, मंडोदरी।
अव्वल नंबर कौन है? नाम तो है लेकिन हम अव्वल नंबर
माया।
हाँ, माँ माने नहीं, आया माने आया। ये मेरे जीवन में ना आई होती तो अच्छा था। उसका नाम है माया लेकिन आती है। और
बाबा, कोई कोई आत्मा बहुत धन का सेवा करता है यज्ञ में और लेकिन ब्रह्म भोजन नहीं करता है, उनका शूटिंग क्या है?
उनको धन का तो मान है, उनको धन का अहंकार है कि हमारे धन से ये यज्ञ चलता है, हमने इतना धन दिया तो हम बहुत साहूकार बन जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि बाबा ने बोला है जो जितना परसेंटेज धन अर्पण करता है अपने जीवन में वो उतने ही परसेंटेज का साहूकार बनेगा। लेकिन स्थूल धन का दान करना उतना महत्व तो नहीं रखता जितना ज्ञान धन दान करने का महत्व तो है, क्योंकि ज्ञान धन ईश्वर से आता है और स्थूल धन मनुष्यों से आता है, तो ज्यादा वैल्यू किसकी हुई? है ज्ञान धन की ज्यादा वैल्यू हुई। इसलिए गीता में भी कहा है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते, ये भी कहा है कि जो स्थूल वस्तुओं का दान देते हैं उन स्थूल वस्तुओं के दान देने से ज्ञान दान श्रेष्ठ है। और
साकार और निराकार का चित्र में नीचे चिपकली और बिच्छू दिया, इसका क्या अर्थ है बाबा?
साकार के चित्र में भी नीचे छिपकली दिए,
छिपकली और बिच्छू,
और निराकार के चित्र में भी छिपकली दिए।
बिच्छू और छिपकली
है,
बिच्छू
वही बिच्छू टेंडन
आजी।
हाँ, साकार के चित्र होता है वो तो ठीक है, निराकार का चित्र कहाँ होता है?
शिवलिंग को दिखाया ना,
शिवलिंग कोई निराकार थोड़ा ही है। जो शिव का लिंग है वो साकार है या निराकार है? बाबा ने तो कहा कि शिव की सिर्फ एक इंद्रिय पूजी जाती है, लिंग, और देवताओं की सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं, नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल कहकर के उनकी उपासना करते हैं। शिव की एक ही इंद्रिय पूजी, इंद्रिय साकार होती है निराकार?
इंद्रिय तो साकार होती
है, साकार होती है। तो साकार का मतलब ये है कोई साकारी व्यक्तित्व है इस संसार का, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों विकारों में सबका बाप है। इसलिए मुरली में बाबा बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। हाँ।
अब पुरुषार्थ के अनुसार सब बच्चे अपना पद पाते हैं बाबा?
हाँ जी,
भगवत गीता में ये लिखा बाबा की कल पहले भी मैंने गुण और कर्मों के वेद के अनुसार ब्राह्मण अर्थात देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों को समूह को रचा था।
हाँ जी,
ये तो भगवान रचता है बाबा या अपने पुरुषार्थ के अनुसार ये पद पाते हैं बाबा?
भगवान ना आया होता तो 63 जन्मों में भी तो अपना कुछ न कुछ आत्मा पुरुषार्थ करती है या नहीं, तो बन गए थे ब्राह्मण?
नहीं
बने। भगवान आता है, ज्ञान सुनाता है, प्रैक्टिकल साकार तन में आता है, उस प्रैक्टिकल साकार तन के द्वारा कहता है कि रचने वाला रचयिता साकार है या निराकार?
साकार है,
साकार है। तो जो साकार है वो अभी भी बहिर्यामी है या अंतर्यामी है? है साकार,
साकार
साकार बहिर्यामी है, निराकार अंतर्यामी है। तो जो साकार आत्मा बहिर्यामी है वो ऐसे ऐसे प्रूफ इकट्ठे कर लेती है कि जिससे पता चले कौन ब्राह्मण का कर्म कर रहा है और कितना कर रहा है। जैसे ब्राह्मण का कर्म बताया, क्या कर्म है? ज्ञान लेना,
ज्ञान
देना। इसके अलावा और कोई दूसरा पेट का धंधा करता है तो ब्राह्मण? ब्राह्मण नहीं। पेट का धंधा करने मात्र में लगा रहने वाला और पेट के धंधे से धन अर्पण करने वाला वैश्य कहा जाएगा या ब्राह्मण कहा जाएगा?
वैश्य
कहा जाए। तो ऐसे ऐसे करके हरेक वर्ण के जो प्रूफ हैं वो वीडियो में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उनको प्रत्यक्ष कर दिया जाता है ज्ञान सुना करके। इसने ऐसा किया ये ऐसा करता है तब ऐसा है, उसने वैसा किया वो वैसा करता है तब वैसा है। जो क्षत्रिय हैं उनका कर्म क्या है? क्षत्रियों का कर्म है
सब कंट्रोल रखना,
युद्ध करना आतताइयों से, और ब्राह्मणों की रक्षा करना। तो यहां ब्राह्मणों की दुनिया में देखना है इस ज्ञान के युद्ध में, इस विकारों के युद्ध में कौन भागने वाले हैं और कौन जीवन पर्यंत लगे रहने वाले हैं। जैसे शिवाजी का नारा था देहं वा पातयामि, देह भले छूट जाए, कार्यं वा साधयामि, कार्य को पूरा करके छोड़ूंगा। तो तो ऐसे ही ये ब्राह्मण जीवन में जो आत्माएं मृत्यु पर्यंत युद्ध करती रहती हैं, वो क्षत्रिय बनकर के ही पैदा होंगी। नंबर बार क्षत्रिय होते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध से पीछे नहीं हटते। ये कोई महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध नहीं है, तीर तलवार और तोप बंदूक का कौन सा युद्ध है? हैं?
अहिंसक
कौन सा युद्ध है?
विकारों
का युद्ध। अगर कोई आता है और जैसे भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है, कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो लड़ना चाहिए या भाग जाना चाहिए? है युद्ध में क्षत्रिय असल होंगे, वो युद्ध करेंगे, भागेंगे नहीं। तो ये भी विकारों का युद्ध है, इसमें भागना नहीं है, जीतना है, इंद्रिय जीत बनना है। तो वो युद्ध करने वाले जो भागते नहीं हैं, जैसे बेसिक में ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो युद्ध करते हैं या भागे हुए हैं? हैं? दूरबाज खुशवाज हैं, दूर भाग जाते हैं जंगल में। जैसे आश्रम में रहने लगेंगे, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं रहेंगे। जैसे सन्यासी चोरी छिपे विकार भोगते रहते हैं, या तो ऐसे विकार भोगते रहेंगे। तो फिर उन्हें क्या कहा जाए? ब्राह्मण कहा जाए? क्षत्रिय कहा जाए? नहीं, न ब्राह्मण हुए न क्षत्रिय हुए। विशेष होते हैं वैश्य, वो दुनियावी धंधा करते हैं पेट पालने के लिए। अच्छे से अच्छे तरीके से अपना पेट पालेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे, बीवी बच्चों का पालेंगे। किस लिए पालेंगे? किस लिए पालेंगे? हैं? क्या चाहते हैं?
देहमान अपना परिवार
का देह अभिमान पूरा करने के लिए। अच्छा महल माड़ियां बना लें, अच्छे अच्छे साधन इकट्ठे कर लें। तो भौतिक समृद्धि होने का लक्ष्य है, नई दुनिया की ऊंच प्राप्ति उनका लक्ष्य नहीं है। जो गीता में कहा है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, वो ब्राह्मणों में पंडित जन है जिनके सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित तो होते हैं। कोई भी कार्य करेंगे उसमें लक्ष्य काम विकार का नहीं रखेंगे कि काम विकार का सुख भोगना है।